सुरासुर मनुष्य दंद बंदिदम घोई घाई कम मलम परमामि बढ़मानम तीर्थम धम्म कृतारम। संसार परमागम का गे तत्व प्रज्ञापन चल रहा है और जिसमें करीब अपन 175 गाथाएं पार कर चुके हैं। 176वीं गाथा से चर्चा आरंभ करनी है आज। 176वीं गाथा में एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि आप बार बार कहते हो कि आत्मा बंधा है, वो पर से तो बंधा नहीं है, तो अपने में अपना बंध कैसे हो सकता है? बंधने के लिए तो कम से कम दो चाहिए। तो देखो, इस टीका में लिखा है कि प्रथम तो यह आत्मा सर्व ही उपयोगमय है। पेज नंबर 348 संस्कृत टीका, हिंदी टीका। क्योंकि वह सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभा स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा उपयोगमय है और उपयोग का मतलब सविकल्प और निर्विकल्प। और निर्विकल्प उपयोग बोलते हैं दर्शनोपयोग को और सविकल्प उपयोग बोलते हैं ज्ञानोपयोग को। इस प्रकार से ज्ञान का स्वरूप ही विकल्पात्मक है और जो स्वरूप होता है कभी उसका निषेध नहीं होता है। तो जब हम निर्विकल्प अनुभूति कहते हैं तो वह ज्ञानात्मक विकल्प का निषेध नहीं है, रागात्मक विकल्पों का निषेध है। जो ज्ञान का स्वरूप है विकल्पात्मक, वो तो उसमें हमेशा रहेगा ही। उसमें जो आत्मा विविधाकार प्रतिभाषित होने वाले पदार्थों को प्राप्त करके मोह राग अथवा द्वेष करता है, वह आत्मा काला पीला और लाल आश्रय जिनका निमित्त है, ऐसे कालेपन पीलेपन और लालपन के द्वारा उपरक्त स्वभाव वाले इस स्फटिक मणि की भांति पर जिनका निमित्त है, ऐसे मोह राग द्वेष के द्वारा उपरक्त आत्म स्वभाव वाला होने से स्वयं अकेला ही बंध है। देखो है ना, क्योंकि मोह राग द्वेषादि भाव उसका द्वितीय है। मान लीजिए अकेला ही बंध है और मोह राग द्वेष भाव उसके द्वितीय हो गए, तो दूसरा हो गया तो अकेला कहां रहा? तो जहां अकेला बोलते हैं तो परद्रव्य के निषेध की बात है। और जब बंधने को दो चाहिए तो मोहराग देश जुदे हैं और आत्मा जुदा है और मोहराग देश से आत्मा बन गया। मोहराग देश आश्रय बंध है, आत्मा जीव तत्व है और इस तरह से ये बन गया, ऐसा वो बोलते हैं। अब इसमें एक उदाहरण दिया है स्फटिक मणि का कि स्फटिक मणि में जैसे रंग की डांक लग जाए वैसे ही लाल पीला नीला हो जाता है। तो वो स्फटिक मणि वो डांक की वजह से लाल पीला नीला नहीं हुआ, बल्कि उसका ही ऐसा स्वभाव है कि जैसी डांक लगे वो वैसे रंग रूप परिणमित हो जाता है। ये कहने का मतलब क्या? ये कहने का मतलब ये है कि वो कोई डांक ने उसमें कुछ कर दिया तुम ऐसा मत समझना। ऐसे ही पर पदार्थ इसके ज्ञान में झलकते हैं तो उनके लक्ष्य से राग देश मोह होता है। तो कहते वो राग देश मोह जो भाव हुए आत्मा में उनका निमित्त तो है ना कोई पुराने कर्म का उदय भी, और जिन पदार्थों से राग देश मोह हुआ है वे पदार्थ भी अंतरंग और बहिरंग निमित्त दोनों हो गए ना। तो हमें समझ लेते हैं कि उन्हीं की वजह से राग देश मोह हुए। तो कहते हैं कि आत्मा का ही ऐसा स्वभाव है कि ये यदि पर उसके जो ज्ञान में झलकते हैं तो अंदर में ही इसका संसार अवस्था में अज्ञान अवस्था में उनसे राग देश मोह करने का स्वभाव है, जैसे वैभाविक शक्ति बोलते हैं ना अपन, उसके कारण ये राग देश मोह रूप प्रणमता है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। गुरुदेव अभी प्रचुन में बहुत विस्तार से बात को कह रहे थे। अभी आप देखिए कि अजीब चित्र है, कोई अजीब संगमरमर की बहुत सुंदर महिला की मूर्ति है और नग्न बनाई किसी कलाकार ने। तो अचेतन की बात मैं इसलिए करता हूं कि हम चेतन हो तो कहें कि उसने भी कुछ एक्टिव पार्ट लिया होगा, उसने भी हमको कुछ लुभाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो मूर्ति तो कुछ नहीं कर सकती, वो तो अपनी जगह पड़ी है, रखी है ऐसी। अब उसे देखकर जिसके हृदय में मोह राग द्वेष हो गया और दूसरे के में नहीं भी होता है, तो यदि वो कुछ करती होती तो हरेक के हृदय में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन वो होता नहीं है। तो इससे मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर ही ऐसा कोई डिफेक्ट मौजूद है कि जिसकी वजह से वो हुआ। अब तकलीफ इतनी है कि वो हमारे जानने में नहीं आती तो होता क्या नहीं होता, तो ऐसा कहे कि नहीं आती तो नहीं होता और जानने में आई इसलिए हुआ, इसलिए हम उस ज्ञान पे अपराध मर देते हैं। उस जानने पे हमारे दिमाग अपराध की दृष्टि चली जाती, पहले तो जाती थी दृष्टि किस पे, पर पे, कि उसकी वजह से सारी गड़बड़ी हुई, इसे हटाओ इसे हटाओ इसे लाओ पर में से। अब अध्यात्म हमने क्या सीखा, तो हमने ये बीमारी पैदा कर ली, कौन सी, कि उसकी वजह से नहीं, वो तो हमने जाना इसलिए हो गया, तो हमारा मतलब कम से कम पहले अच्छे थे केवल दिल्ली कि कम से कम उस जड़ पर को तो मानते थे कारण, अब तो अपना जो जानने का स्वभाव है अपने स्वभाव को कारण मान लिया, कहने जानना पहले जानना बंद करना, पहले कहते थे इसे हटाओ और अब कहते उसे मत हटाओ, अपन जानो मत, फिर यही है ना बिल्कुल। ये जो पर को जानने से अपराध होता है, अपराध है ये जो जितना प्रतिपादन है उसके पीछे यही है, तो ये एक कदम और अपन पीछे हो गए, आगे नहीं बढ़े। जैसे मैं कहता हूं ना कि क्रमबद्ध पर्याय, तो वो कहते ईश्वर जगत का करता है, हम जैनी कहते कर्म करता है, तो अच्छा है तुम चेतन ईश्वर को मान लेते, तुम तो जड़ेश्वर को मान लिया, परद्रव्य को करता तो माना ही माना है, उनने चेतन परद्रव्य को माना था, तुमने जड़ परद्रव्य को माना। परद्रव्य हमारा कर्ता धरता नहीं है, हमारी सुख दुख के जिम्मेवार हम स्वयं हैं, हम तो इस पे लाना चाहते थे इसलिए कहा था कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। ऐसे ही उस निमित्त से कुछ नहीं हुआ, ये हमने कहा तो तुम कहते हो कि मैंने उसे जाना, सारी गड़बड़ी जानने में ही हुई है, न रहता बांस न बजती बांसुरी, न हम जानते न हमें राग होता न सब गड़बड़ होती, ये सब कैसा हो जाए। अब ये जो रास्ता है बिल्कुल असंभव वाला रास्ता है, क्योंकि गेयों का स्वभाव गेयत्व है, प्रमेयत्व धर्म उनमें है, वे किसी न किसी ज्ञान के विषय बने, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें गेय बनने से रोक नहीं सकती, और ज्ञान का स्वभाव जानना है, उसके स्वभाव को भी किसी दृष्टि से रोका जा नहीं सकता है। पर ऐसा होता कि उसके समीप जाकर के जाने पर दूर से न जान पाए, तो कहते हैं ये दूर दूर रखो इन्हें, जैसे अग्नि और घी को अपन दूर दूर रखते हैं, लेकिन ये तो दूर से ही जानने का स्वभाव है, अलोकाकाश को भी यहां से जान लेता है, केवली जानते होंगे, अरे अपन जानते हैं संसांतला जी, अलोकाकाश है कि नहीं है, पक्का भरोसा है आपको, आप जानते हैं कि साहब ये तो हम जो 8 वर्ष के थे तभी से जानते हैं कि आकाश 2 प्रकार का है, एक लोकाकाश और अलोकाकाश, जानते कि नहीं जानते, इसको जानना कहते हैं कि नहीं जानना कहते हैं, मैं आपसे बोलो, चलो अन्ना जी आप जो गोमरसार आदि पढ़ पढ़ के आगम से जानते हैं वो जानना है कि नहीं जानना है, तो जानना है तो हम जानते हैं, इतने दूर से जानते हैं, तब जानना कैसे रोका जाए बोलो। तो वो कहते हैं कि जानने से नहीं, जानने में वो निमित्त हैं, वो तो गे रूप निमित्त हैं, लेकिन तेरे में जो राग द्वेष मोह के परिणाम हुए, जो एकत्व बुद्धि हुई, उस मोह में वो जो निमित्त हैं, अपना मान्य रूप जो तूने जाना है वो है खतरनाक, और उसकी वजह से ये बंद होता है। तो अब वो कहते हैं कि बंद नहीं को जो दो चाहिए, तुम कहते उसकी गलती नहीं पर की, और अपने स्वभाव में गलती नहीं, जानने में गलती नहीं हुई, और जिसको जाना उसकी भी गलती नहीं, तो गलती हुई कहां, तो फिर राग द्वेष मोह हुए ना, यही गलती है कि बात तो हुई है, यानी उसका कर्ता भोक्ता भी वही है, माने अभिन्न सत्कार के विकार के अभिन्न सत्कारक 85 इकाई की बासठवीं गाथा में है ना, तो वो कहते हैं दूसरा चाहिए ना बंधने को, तो कहते वो राग द्वेष मोह वही दूसरे हैं। ये बंध की बात इन्होंने यहां पर संक्षेप में कही। अब अगली गाथा का टीका थोड़ी पढ़ते हैं कि यह आत्मा साकार और निराकार प्रतिभास स्वरूप होने से प्रतिभास पदार्थ समूह को जिस मोह रूप राग रूप या देश रूप भाव से देखता जानता है उसी से उपरक्त होता है, सो वह उपराग वह वास्तव में इस निग्ध रूक्षत्व स्थानीय भाव बंध है, और उसी से अवश्य पौद्गलिक कर्म बनता है। इस प्रकार यह द्रव्य बंध का निमित्त भाव बंध है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई पुद्गल आपस में बंधते हैं तो उनका एक नियम है, और वो नियम क्या है, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा। उसमें स्निग्ध और रूक्षत्व होता है, स्निग्ध स्निग्ध के साथ बनता है, स्निग्ध रूक्ष के साथ बनता है, रूक्ष स्निग्ध के साथ। दो रेत के परमाणु हैं ये पड़े रहते हैं आपस में, बनते नहीं कि दोनों रूखे हैं। दो घी के परमाणु हैं वे भी आपस में बनते नहीं है क्योंकि दोनों स्निग्ध हैं, और बेई रेत और घी मिल जाए तो बन जाते हैं। समझ गया, वो तो फिर बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसकी बात में तो मोटी मोटी बात बता रहा हूं। वो कहते बंध का कारण स्निग्धता और रूक्षता है, समझ गए ना। माने स्निग्ध का स्निग्ध के साथ बंध नहीं होता, रूक्ष का रूक्ष के साथ नहीं होता, और उसके जो नियम है दो अधिक परमाणु होना चाहिए, वो लंबी प्रक्रिया की बात में अभी नहीं करना चाहता। जैसे अपने शादी है ना, स्त्री और पुरुष में होती है, पुरुष पुरुष में नहीं होती, स्त्री स्त्री में नहीं होती, माने विपरीत ध्रुव चाहिए। जो हम में कमी है और सामने वाले में वो है, सामने वाले में कमी है वो हम में है, तो दोनों उस कमी की पूर्ति के लिए एक 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 होते हैं। अब वही बात हम में और वही तुम में है, एक आदमी के पास पैसा है लेकिन काम करने की क्षमता नहीं है, दूसरे के पास काम करने की क्षमता है लेकिन पैसा नहीं है, तो दोनों पार्टनर हो जाते हैं, एक वर्किंग पार्टनर और एक पूंजी का पार्टनर हो जाते हैं कि नहीं। दो पूंजी वाले आपस में पार्टनर नहीं हो सकते, दो वर्किंग वाले अपने आप में पार्टनर नहीं हो सकते। तो कहते हैं कि आत्मा का जो पुद्गल के साथ बंध होता है तो इसमें स्निग्धता है कि रूक्षता है, इसमें भी स्निग्ध रूक्षता चाहिए ना, उसके बिना बंध कैसे होगा। स्निग्धता और रूक्षता के बिना अपने अंदर भी बंध नहीं होता है, मतलब पुद्गल का पुद्गल में भी नहीं होता है, तो जीव के साथ कैसे हो जाएगा, ये प्रश्न है। तो वो क्या कहते हैं कि जानना नहीं, देखो इसमें बदला है कि जिस पदार्थ को राग देश पूर्वक मोह पूर्वक जाना, क्या जाना कि ये मैं हूं ऐसा जाना, इसका नाम है मोह पूर्वक जानना। ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए सुखकर है, ऐसा जानना उसका नाम है राग पूर्वक जानना। और ये मेरे को दुखदायक है ऐसा पर के बारे में जानना, उसका नाम है द्वेष पूर्वक जानना। तो ऐसा जानना वो बंध का कारण है, जानना नहीं। क्या ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरे को अनुकूल है, ये मेरे को प्रतिकूल है, ऐसा जानना। तो ऐसा जानना ये ज्ञान का लक्षण नहीं है, ये तो मोह राग द्वेष का लक्षण है। तो मोह राग द्वेष बंध के कारण हुए ना। अब भाषा ऐसी आती है कि ऐसा जानना, तो हमें लगता है कि जानना बंध का कारण है, हम इसमें वजन दे देते। क्या देखो क्या लिखा है, यह आत्मा साकार और निराकार प्रतिभास स्वरूप होने से, कि साकार और निराकार माने साकार माने ज्ञान और निराकार माने दर्शन, ये तो इसका स्वरूप है, ये कोई दोष नहीं है। होने से प्रतिभास से, अब जो उसके ज्ञान में आए वे बोलते उन्हें बोलते हैं प्रतिभास से। एक चक्कर और चला है कि वो साहब भाषित होना अलग बात है और जानना अलग बात है। क्या फर्क है इसमें? अब बिल्कुल फर्क नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या वहां जाकर लिखा, वो तो परभाषित होता है और अपने को जानता, ऐसा वाक्य लिखा मिल गया कहीं, समझ गए ना। तो उन्होंने पर को जानना जानता है नहीं, तो नहीं जानने को भाषित होना कहते हैं और जानने को जानना कहते हैं। ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा भी कह सकते अपना आत्मा भाषित होता है और पर जानने में आता है, ऐसा भी कह सकते थे। भास होता है जानते नहीं है, भास होता है जानते नहीं। वो शांति भाई जब मेरी बात पूछे क्या अपने में कुछ फर्क नहीं है भाई साहब, कि नहीं 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 आओ अभी सूक्ष्मता से नहीं जानते, आप गहराई में नहीं जानते, आप बारीकी में नहीं जानते, नहीं फर्क है, फर्क है, फर्क है। केवल ज्ञान में स्वाव पर दोनों भाषित होते हैं, ज्ञान को स्वपराव भाषी कहा है। क्या कहा? स्वपराव भाषी माने स्वा को भी जानने वाला और पर को भी जानने वाला। अविभाषी शब्द का प्रयोग स्व पर दोनों में होता है। अब एक आध जगह, अब बोलो कैसी जगह है, केवल तीन जगह ऐसी है कि ऊपर संस्कृत में देखो तो भेद ही नहीं है, तो हिंदी वाले पंडित ने लिख दिया ऐसा ऊपर लिख दिया कि आत्मा अपने को जानता है, नीचे लिख दिया कि पर पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं। दर्पण आए तो ऐसा करके है ना, तो बस वो उसे पकड़ के संस्कृत में तो एक ही शब्द था, हिंदी के अनुवाद में हो गया, और संस्कृत पर तो देखते ही नहीं है, ऊपर तो कोई निगाह ही नहीं डालता, सब नीचे ही निगाह रहती है। अपने नीचे का मतलब समझे ना, कि नीचे हिंदी छपी है और ऊपर संस्कृत है तो ऊपर निगाह तो है ही नहीं, नीचे निगाह है वो गजब से गजब से, देखो तो क्या लिखा, ऊपर जानना लिखा, नीचे भाषना लिखा है ऊपर, अरे भाई कहाँ लिखा ऐसे गजब बहुत हो जाते हैं अध्यात्म मानो के तो वो क्या कहते सुनो, कौन कहाँ वो अपना पेज कौन सा है, पेज बदल गया बोलो पेज नंबर बोलो भाई। हाँ देखो, पदार्थ समूह को जिस मोह रूप राग रूप उद्देश्य रूप भाव से देखता जानता है, मोह रूप भाव से राग रूप भाव से उद्देश्य रूप भाव से देखता जानता है, उसी में उपरक्त होता है, तो वह उपराग वास्तव में स्निग्ध रूप सत्व की जगह है। वो जो मोह हुआ ये मैं हूं, ये मेरे अनुकूल है मेरे प्रतिकूल है, ऐसा जो उपराग हुआ वो ही रूक्ष है और वो ही स्निग्ध है, राग स्निग्ध है और द्वेष रूक्ष है, तो ये आत्मा में स्निग्धता रूक्षता हो गई और इस तरह वो पुद्गल कर्म के साथ बन जाता है। क्या तो स्निग्ध रूक्षत्व बंधा, वो प्रक्रिया होनी चाहिए थी ना, उस प्रक्रिया का जवाब उन्होंने यहां दिया है। अब इसमें ये सब बताया है कैसे बनता है, पुद्गल पुद्गल के साथ बनता है, जीव जीव के साथ, देखो दो जीव में तो आपस में बंद होता ही नहीं, और जीव और पुद्गल के साथ बंद का क्या स्वरूप है, वो सब बात बताई है। अब तो आप पेज नंबर 352 पर पहुंचो, 179वीं गाथा इसे अपन पढ़ते हैं। रत्तो बंदधिकम् कितना साफ शब्दों में लिखा है कि रक्तो बंधति कम्मम, रागी जीव कर्म को बांधता है। ये रागी कौन सा लेना, पीछे वाला एकत्व बुद्धि पूर्वक राग करने वाला, कौन सा राग बोला था मैंने, देखो ये मैं हूं ऐसा मोह का लक्षण, और ये मेरे को अनुकूल है सुखकर है ये राग का लक्षण, अकेला सुखकर की लगना नहीं, सुखकर का मानना, मानने पूर्वक राग होना, वो अनंतानुबंधी राग मतलब मिथ्या प्रसाद वाला राग, और ये मेरे लिए प्रतिकूल है, ये अकेला द्वेष नहीं है, ये अनंतानुबंधी द्वेष है, और अकेला किसी बात में आपने मेरे से प्रतिकूलता बरती और मैंने गुस्से में आपको चांटा भी मार दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आप मेरा बुरा करने वाले हैं, तो वो चांटा मार देने के बाद भी अनंतमा भाग बंद होगा, और मैं आपको ऐसा मानता हूं कि आपने मेरा बुरा किया, आप मेरा बुरा करते हैं, और फिर मैंने आपको चांटा भी नहीं मारा, तो भी उससे अनंत गुणा पाप मैंने देश का बांधा, क्योंकि वो तीव्रता तो ऐसी मान्यता रहित वाले के भी हो सकती है चरित्र मोहजन, तो यहां तक हो सकती है कि भरत चक्रवर्ती बाहुबली में चक्र तक चला सकते हैं, बोला समझ लो आप, और यहां ये कुछ भी नहीं करे तो भी पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट हैं, ऐसी मान्यता, और मोह मोह एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि का नाम मोह, समझे ना, और ये मेरा भला बुरा कर, ये मेरे को इष्ट अनिष्ट हैं, इष्ट अनिष्ट बुद्धि, इसका नाम राग द्वेष, कौन अनंतानुबंधी वाला, तो ये बंद के कारण है। तो कहते हैं कि रत्तो बंधधि कम्मम, वो रागी जीव परम को अपने इष्ट मानने वाला रागी जीव, जब अकेला राग आए तो उसमें मिथ्यात्व और द्वेष भी समझ लेना, क्योंकि ये राग अकेले राग के लिए भी प्रयोग होता है और इन सबके प्रतिनिधि रूप में भी प्रयोग होता है, जब हम कहते भगवान वीतरागी है तो अकेले राग से रहते नहीं है, देश से रहते भी है, मोह से रहते भी है ना। तो रस्तो बंधति कम्मम, रागी जीव कर्म बांधता है, और मुंचति कम्मे ही राग रहे दप्पा, राग से रहित जीव कर्मों से मुक्त होता है। एसो बंध समासो, ऐसा बंध का संक्षेप में कथन है। बंध समास माने बंध का संक्षेप में कथन है। जीवानम, जीवों के बंध का ऐसा है, ये बात व्यवहार नय की नहीं है। कलका जान निश्चय दो, ये बात निश्चय नय से है, ये जानो। लिखी कहने लिखी व्यवहार की बात तो पर से बनता है, व्यवहार की बात हुई। अपने मोहराज देश से बनता है तो निश्चय की बात हुई ना, अशुद्ध निश्चय न, शुद्ध निश्चय नहीं नहीं, ठीक है ना। दान निश्चय दो, तो इसमें स्पष्ट लिखा कि राग रत्तो बंदति और राग रह दप्पा मुंचति। अब ज्ञान पर का ज्ञान बंद का कारण है, कहां से निकलता है बोलो। हमारे दो खतरनाक बातें चल रही हैं कि एक तो पर को आत्मा जानता ही नहीं है, अब इसके इतने आगम प्रमाण उपलब्ध हैं कि वो बात चिखी नहीं, तो अब एक कहने लगे कि वो पर का जानना बंध का कारण है। ख्याल में आया ना, तो पर का जानना भी बंध का कारण नहीं है, तो कहते पर का आप नहीं जानना भी बंध का कारण, नहीं जानना भी बंध का कारण नहीं है। बोलो, ज्ञान गुण तो बंध में कारण होता ही नहीं। अष्टश्री में ऐसा लिखा है, अज्ञानाते ध्रुवो बंधो गयानंतान्न केवली, कि अज्ञान से यदि बंध मानोगे तो हमेशा बंध होता ही रहेगा, क्योंकि गे तो अनंत हैं और हर आदमी केवल ज्ञान होने के पहले केवली तो कोई है नहीं, तो अज्ञान तो है ही ना तत्संबंधी, और एक अज्ञान तो विद्यमान है ही, कि नहीं जानना किसी को ये कोई बंध का कारण नहीं है। तो जानना मोक्ष का कारण नहीं है, पर को निज रूप जानना बंध का कारण है, और निज को निज रूप जानना मोक्ष का कारण है। निज को निज रूप मानना मोक्ष का कारण है, और निज को नहीं रमना मोक्ष का कारण है। अकेला जानना दो, जानना दो स्वभाव है, जब हो गया ना निश्चय दो। अब परिणामा दो बंधो, परिणामो राग द्वेष मोह जुदो, उन्हें कह दी ना कि रागी जीव बनता है, तो अब राग में क्या क्या आता है वो सब अब विस्तार में जा रहे हैं। वो कहते हैं परिणाम आदो बंधो, इसका मतलब हुआ कि परिणाम से बंध होता है, मतलब राग परिणाम से बंध होता है, मतलब स्वभाव बंध का कारण नहीं है। ऐसा अर्थ हुआ ना, जो पर्याय में परिणमन है वो ही बंध का कारण है, क्योंकि बंध के कारणों का अभाव होकर मोक्ष होता है, तो जिसका अभाव होता है वो पर्याय होती है, द्रव्य का तो कभी अभाव होता नहीं है। तो स्वभाव कभी बंध का और मोक्ष का कारण नहीं होता है, स्वभाव पर दृष्टि रखो तो वो मोक्ष का कारण है। दृष्टि रखो माने ये मैं हूं ऐसी मान्यता, तो पर पे दृष्टि रखो माने जानो नहीं ये पर मैं हूं ऐसी मान्यता पूर्वक, समझ गए ना। तो कहते हैं परिणामादो बंधो, बंध परिणमन परिणाम से होता है, और तो परिणामो राग द्वेष मोह जुदो, तो कौन परिणामों से, कि जो परिणाम राग द्वेष और मोह से युक्त हैं उन परिणामों से बंध होता है। जानना भी तो परिणाम है ना, परिणमन है, तो जानने वाले परिणमन से बंध नहीं होता, नहीं जानने वाले परिणमन से बंध नहीं होता। कौन से परिणमन से बंध होता है, मोह राग द्वेष जुदो आ गया ना। अब वो कहते हैं कि असोहो मोहो विदोषो, मोह और द्वेष ये दो अशुभ भाव हैं। क्या कह रहे, देखो मोह माने मिथ्यात्व और दोष, मिथ्यात्व कभी शुभ नहीं होता तो अशुभ ही होगा, और द्वेष कभी शुभ नहीं होता। और रागो सोहो असोहो हवधि, राग शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। तो अब देखो पूरे राज देश पूरी पूरा जो ग्रुप है वो तो ए है, अब इसमें शुभ कितना है आधा और ढाई तो अशुभ ही है, समझ में आया कि नहीं आया। मोह अशुभ, द्वेष अशुभ और राग के दो भेद हैं शुभ और अशुभ, तो आधा राग भी अशुभ हो गया क्यों, और आधा राग शुभ हो गया। यही लिखा था को परिणाम आदो बंदो परिणामो राग द्वेष मोह जदो और असोहो मोहो दोषो, मोह और दोष अशुभ है, सोहो असोहो हवधि रागो, और राग शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है। अब थोड़ा वर्णन है पढ़ लो, सोहे परिणाम हो पुण्यम असोहो पावित्य भणति मन्नेषु, कितनी गरीब की बात लिखी है। कहते पर के प्रति, अभी स्वा के प्रति बात नहीं है, पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य बंध का कारण है और पर के प्रति अशुभ भाव पाप बंध का कारण है और अपने प्रति परिणाम वो मोक्ष का कारण है। तो अपने प्रति शुभ अशुभ ऐसा भेदाला ही नहीं है, पढ़ो है ना गाथा में ऐसा, देखो सोहो परिणामो पुण्यम असोहो पापम भणति अन्येषु, अन्य पदार्थों में शुभ परिणाम वो पुण्य बंध का कारण और अन्य पदार्थों में अशुभ परिणाम वो पाप बंध का कारण, लिखा ना वो परिणामो नन्य गदो अनन्य गदो, मन अपने में न अन्य वो अनन्य, अन्य के आश्रय से नहीं, जो अपने ही आश्रय से परिणाम होता है वो दुख क्षय कारणम समझे, वो दुख के क्षय का कारण समझे माने शास्त्रों में कहा गया है अथवा जैनागम में कहा गया है। तो अपने लक्ष्य से जो परिणाम होता है वो शुभ अशुभ होता ही नहीं, तो मुझे आत्मा का कल्याण करना है तो ये अपने लक्ष्य से हुआ तो ये शुभ तो है क्यों, कहते भाई साहब इसे आत्मा का लक्ष्य नहीं कहते हैं ये ऐसा नहीं कि मुझे अपना कल्याण करना है तो आत्मा के लक्ष्य हो गया, तो आत्मा ज्ञान का गेय बनेगा ऐसा नहीं कि ये मैं हूं इसका नाम है आत्मा के लक्ष्य होने वाला परिणाम, ऐसी मान्यता ऐसा जानना और ऐसे ही रमना तो ये है उसका नाम आत्मा के लक्ष्य हुआ परिणाम, चल रहे ना। अभी बहुत बाकी है अपना मामला, अपने मेरे ख्याल से कितने 17-18 व्याख्यान हो गए हैं, उस समय बहुत कम रह गया, चरणान योग चूल का पूरी की पूरी पड़ी है, इसलिए थोड़ी रफ्तार तेज की है और विषय भी सरल है, समझे ना, इसलिए मैं टीका नहीं पढ़ रहा हूं। देखो पेज नंबर 356 ये जो गाथा है ना 182 इसकी का हेडिंग पढ़ो, हेडिंग समझ गए उत्थान का, अथ जीव से स्वपर द्रव्य प्रवृत्ति निवृत्ति सिद्ध सुपर विभागम दर्शयति। अब क्या कहते हैं, अभी तक तुमने बता दिया अशुभ परिणाम ये है अशुभ परिणाम ये है, अभी क्या जी अपने आश्रय से जो परिणाम होते हैं वो मुक्ति के कारण है, पर के आश्रय से परिणाम होते हैं वो बंध के कारण है, और जो पर के आश्रय से शुभ परिणाम होते हैं वो पुण्य बंध के कारण है, और पर के आश्रय से जो अशुभ परिणाम होते हैं वो पाप बंध के कारण है, इतना बताया ना। तो अब ये कहते हैं कि हर बात में स्वपर 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 लगा देते हो, ये तो बहुत झगड़े की बात है। एक नीति का श्लोक आता है अयम निजा परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। ये नीति का श्लोक है और शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, क्या अर्थ है इसका, अयम निजा अयम परा, ये मैं हूं ये मेरा है और ये पर है, गणनाम लघु चेतसाम, ऐसा तो क्षुद्र बुद्धि वालों का है भेद करना तो जैन धर्म कहता है असली धर्म है उसको वो नीतिकार कहता है क्षुद्र बुद्धि वालों का है, और उदार चरिता नाम तू जिनका चरित्र उदार है उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया उनका कुटुंब है, सब उनके अपने ही अपने हैं, कोई पराया है ही नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी। अपना तो कोई पर है ही नहीं, हमें तो कोई पराया दिखता ही नहीं, हमें तो ये सब विद्यार्थी अपने ही अपने दिखते हैं। अब ऐसा समझता है कि मैं महासंत हूं, ऐसा जो कह रहा हूं मैं बहुत उदार चित्त वाला हूं। ये कह रहे कि ये अज्ञान है सबसे बड़ा। ये कहते कौन कि मेरा तो कोई नहीं है, उदार चरता नाम तू न कोपी। तो कहते सारी दुनिया अपनी है, ये उदार चरते पर मैं, ये मेरा है ये पराया है, ये राग जैसा कहना है, ये अज्ञान है, लेकिन मेरा कोई पर नहीं है। क्यों मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूं। रागादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूं। देहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूं। अपने तो ये भावना वाले हैं, लेकिन क्या नहीं लिखा, देखो क्या लिखा, जीव से जीव के स्व पर द्रव्य प्रवृत्ति निर्वृत्ति सिद्धये, कि जीव स्वद्रव्य में प्रवृत्ति करे और परद्रव्य से निर्वृत्ति करे, इसके लिए स्वपर विभागम दर्शयती, कि इस सारी दुनिया को दो भागों में हम इसलिए बांट रहे हैं कि स्व में प्रवृत्ति करो और पर में। उनके यहां भी दो भागों में तो बांटा है, एक जगह राम और एक तरफ गांव, क्यों सारी दुनिया एक तरफ और राम भगवान एक तरफ बांटते ना, लेकिन वो अपने से भिन्न पर पदार्थों को दो भागों में बांटा, और एक में रखा राम को, एक में रखा गांव को और अपन को। जैन दर्शन कहता है सारी दुनिया में दो भागों में बांटो, वे दो भाग राम और नहीं उनके, राम और जगत के नहीं है, एक में अपना आत्मा राम और एक में पर। जिन भगवान को वो अपने में रखते हैं, अपन उन भगवान को पर में रखते हैं, अनंत सिद्ध भी पर। क्यों लिखा के नहीं लिखा कि इस स्वपर विभागम दर्शयती, ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन विभागाधिकार हमने इसलिए रखा है, स्व और पर का भेद हम काय के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का कल्याण इसमें है कि हम जाने कि मैं स्व हूं और पर कौन हूं, है ना। अभी बहुत बातें हैं, गाथा पढ़ो तो भी बहुत चीजें आ जाती हैं, देखो पढ़ लो, भणिदा पुड विमोहा जीव निकाया थाबराय तसा अन्ना ते जीवा दो जीवो भी ते दो अन्नो। के सारी दुनिया को जीवों को भी दो भागों में बांटा, तिरिस स्थावर पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये सब पर हैं, अब मैं इनसे भिन्न स्वा हूं। ये सारे जगत को दो भागों में बांटना, स्वपर विभाग में बांटना, और ये सब अब ये जो पर हुए ना, अब इनके बुरा करने का भाव अशुभ और इनके भला करने का भाव शुभ, और इनके बारे में कुछ होना ही नहीं, बुरा क्या नहीं होना जानना ही नहीं, बुरा और भला करने का भाव नहीं होना ध्यान में है ना, ये कितनी स्पष्ट बात है। अभी उधर को ले जाते हैं सर, देखो पेज नंबर 358 पर टीका पढ़ो, बहुत अच्छी है। जो आत्मा इस प्रकार जीव और पुद्गल के निश्चित चेतनत्व और अचेतनत्व रूप स्वभाव के द्वारा, कि जीव का स्वभाव चेतन और पुद्गल का अचेतन, इन स्वभाव के द्वारा स्वपर के विभाग को नहीं देखता, वही आत्मा यह मैं हूं यह मेरा है इस प्रकार मोह से परद्रव्य में अपनेपन का अध्यवसान करता। ये अभी अभी तुम्हारी चक्कर चल रहा है ना, तो पर्याय में केवल गाना भी है, वो उसको उसकी जड़ मेरे को थोड़ी सी ख्याल आई है कि कहाँ है अन्ना जी, मैंने आपको बताई थी ना, क्या है कि उपयोग लक्षण है जीव का। अब वो उपयोग लक्षण है और उपयोग पर्याय, पर्याय रूप उपयोग लेना, क्यों कि जागता हुआ तो वो ही है ना, लक्षण तो उसे कहते हैं जो सारी दुनिया को बाहर से दिखाई दे चिन्ह के रूप में, तो उन्होंने कहा कि आठ प्रकार का ज्ञान और चार प्रकार का दर्शन, उसमें जो सामान्य पना है वो लक्षण है जीव का। अब क्या है कि हर जगह न्याय शास्त्र की भाषा तो होती नहीं है कि वो पकड़े। और फिर जब अब वो उपयोग लक्षण है, लेकिन लक्ष्य तो त्रिकाली जो भगवान आत्मा है ना, पहचानना है जिसे, तो वो तो त्रिकाली ध्रुव है ना, अथवा वो द्रव्य गुण पर्याय वाला है कि अकेला द्रव्य भाव वाला है जिसे हमें पहचानना है, तो वो लक्ष्य है। और जो उसका लक्षण है, तो वो जो वर्णन है शास्त्रों में कई जगह, तो उस लक्ष्य का वर्णन किया, वो विशेषण दे दिया उस लक्ष्य के लक्ष्य से, और हम उसे वो लक्षण के विशेषण मान लेते हैं, इसलिए हमको देखो ये लिखा है त्रिकाली जानता, ऐसा जानने का सोचा भी ये वो ये उसमें मुझे को थोड़ा सा भी मैंने ज्यादा उसमें सोचा नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, मेरे फुर्सत भी नहीं है, लेकिन मैं जो मुझे उसमें से बीज दिखाई दिया, क्योंकि जो भी वो उदाहरण आते हैं तो कहते लक्षण है, लक्षण है ना, उपयोग लक्षण है ना, और वो यहां उपयोग को बताया है कि देखो ऐसा 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 ऐसा। अरे सामान्य के उपयोग सामान्य का, तो उपयोग सामान्य तो वो पर्याय वाला जो सामान्य है वो निगोदिया के पर्याय नामक ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक उसमें सब शामिल है ना, तो उसके महिमा के जो भी विशेषण आएंगे वो निगोदिया से लेकर केवल ज्ञान तक के सब आ सकते हैं। हम क्या समझते हैं, सारे विशेषण निगोदिया से लेकर केवल ज्ञानी तक हमेशा पाए जाना चाहिए, और इसलिए यदि हमने वो नहीं पाया जाता है इस वर्तमान में, अभी केवल ज्ञान रूप प्रणमन पूरे जानने सबको जानने रूप प्रणमन नहीं पाया जाता है, तो लक्ष्य नहीं मिला तो हम जीव ही नहीं रहेंगे। ये मेरे उसमें बीज दिखता है, बाकी जो बात आएगी समय पे जब मैं विस्तार से उसकी अध्ययन करूंगा देखूंगा तब करूंगा, लेकिन वो जो जितने मेरे आया चलते फिरते ज्ञान में, उसके मूल में जड़ में मुझे एक खराबी दिखाई देती है। अभी मैं यहां ज्यादा नहीं उलझना चाहता हूं उसमें। देखो क्या लिखा, गेण नदी ने बमी मुंचदी, कौन गा था 185, करे दिन ही पोगलाणी कम माणी, कितनी बढ़िया गाथा है। देखो बठन नवि शब्द कालेशु पोगल मध्य जीवो, जीव पुद्गल के बीच में सदा काल रहता है। देखो शब्द कालेशु बठन नवि, सदा काल रहते हुए कहां, पोगल मध्य पुद्गल के बीच में, जीव जीव पुद्गल के बीच में, देह में है, संयोग में है, सिद्ध भी है तो चाहो तो पुद्गल भरे रहे, पुद्गल तो सरासर भरे ना लोकाकाश में, चाहे अपने संबंधित हो चाहे असंबद्ध हो। तो जीवो पुगल मज्जे सभ्य कालेशु बठन नपि, सदा काल वर्तमान रहने पर भी, बठन नपि है ना, ना गेन नदी ना उसको ग्रहण करता है, ना मुंचदी ना छोड़ता है, किनको, पोगलानी कम्माणी, पुगल कर्मों को ना जीव ग्रहण करता है ना छोड़ता, उसके बीच में रहता है लेकिन उसे कोई लेना देना नहीं है। देखो है ना क्या कि जीव सभी कालों में पुद्गल के मध्य में रहता हुआ भी पौद्गलिक कर्मों को वास्तव में ना तो ग्रहण करता है और ना छोड़ता है और ना करता है, यानी कुछ भी नहीं करता है उसे। पुद्गल का प्रणमन पुद्गल में होता है, जीव का प्रणमन जीव में होता है। देखा और आगे वह अभी संसार अवस्था में द्रव्य से उत्पन्न होने वाले अशुद्ध स्वपरिणाम का कर्ता होता हुआ कर्म रज से ग्रहण किया जाता है और कदाचित छोड़ा जाता है। देखो क्या होता है कि जब कर्मों को ना करता है ना छोड़ता है ना ग्रहण करता है, तो कहते हैं कि वो है निमित्त, जिसमें उसके निमित्त से नहीं, भाषा देखो दादा क्या कहते हैं, कर्म के निमित्त से राग रूप परिणमता, ऐसा नहीं कहते, कर्म का उदय है निमित्त जिसमें, ऐसे स्वयं के राग रूप परिणमन से, स्वयं में मोह रूप और देश रूप परिणमन से। देखा ना कि अभी द्रव्य से उत्पन्न होने वाले, मैंने अपने आत्मद्रव्य में उत्पन्न होने वाले स्वपरिणाम है उनका कर्ता होता है,
वो रागादिक का कर्ता है, देखो कर्म का कर्ता नहीं है, रागादिक का कर्ता है। कर्म रज से ग्रहण किया जाता है और कदाचे छोड़ा जाता है, माने धूल उसे ग्रहण करती है और धूल से छोड़ा जाता है, माने कर्म से बनता है और छूटता है। काय से वो जो राग और वीतराग परिणाम उसके अंदर होता है वो उसके बंधन का कारण है। वो बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो है ना, कारमान जर्गनासो जगे में ना बंधे जीव बंधे ना कदापि मन बचकाय जोग सो, और चेतने अचेतने की हिंसा सो ना बंधे जीव बंधे ना ही पंच इंद्रियन के भोग सो है ना, क्या है योग सो कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो इत्यादि के वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग। देखो बहुत स्पष्ट है 362 पेज पे भावार्थ की दो पंक्तियां। अभी संसारावस्था में जीव पौद्गलिक कर्म परिणाम को निमित्त मात्र करके अपने अशुद्ध परिणाम का ही कर्ता होता है, उनको निमित्त वो निमित्त है उसमें पौद्गलिक कर्म, लेकिन उनका कर्ता भोक्ता नहीं है, कर्ता भोक्ता अपने अशुद्ध परिणाम का है। अब देखो आगे आगे की टीका अगली गाथा पेज नंबर 373। जैसे नए मेघ जल से के भूमि संयोग रूप परिणाम के समय अन्य पुद्गल परिणाम स्वयमेव वैचित्र को प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं अपने राग द्वेष मोह से कर्म में ऐसी प्रक्रिया क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, क्या कि हमारे अंदर में मोह राग द्वेष हुए तो सामने वाले के अंदर में वो कर्मों में ऐसी प्रक्रिया क्यों हो जाती है कि वे हमसे आगे चल जाते हैं। मैंने एक बैराग के नाम वो महाकाव्य लिखा था, कहीं पढ़ा होगा अन्ना जी के पास, तो उसमें वर्णन किया है एक नायिका का, तो उसकी कमर का वर्णन किया है कि पतली कमर, तो उसमें एक पंक्ति लिखी है कि ऐसा विचित्र स्वरूप है क्या कि दूसरे का दिल टूटता जब निज को मरोड़ती, एक कमर जब अपने को मरोड़ती है दूसरे को तो नहीं मरोड़ती है, किसको मरोड़ती है, वो नाचने वाली कमर मटकाती है तो किसकी कमर मटकाती है, अपनी के दूसरे की कमर, कि टूट जाते दिल किसके दूसरों के जब निज को मरोड़ती, जब ये कमर अपने को मरोड़ती है तो दूसरों के दिल टूट जाते हैं। ऐसा लिखा था उस वक्त जब मैं 18-19 वर्ष का था तब लिखा था, पढ़ा है लिखा कहीं क्या, टूट जाते दिल दूसरे के जब निज को मरोड़ती, विरोधाभास अलंकार है कि जब खुद को मरोड़े तो खुद टूटना चाहिए, मेरा हाथ मरोड़े तो मेरा हाथ टूटना चाहिए, लेकिन मेरा हाथ कोई मरोड़ता है तो सामने वाले का दिल टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसे ही यहां लिखा कि आत्मा में मोह राग द्वेष हुआ तो वे कर्म वहां से आगे बन जाते हैं, उनमें एकदम कारमान वगैरह कर्म रूप परिणत हो जाती है, ये प्रक्रिया कैसे होती है, तो उसका उदाहरण दिया है कि जब नया मेघ बरसता है, बरसात में नए मेघ जल से भूमि का संयोग होने पर, नया मेघ जल भूमि पर गिरे तो उसके समय अन्य पुद्गल परिणाम, अन्य पुद्गल के परमाणु जो वहां पड़े हैं वे स्वयमेव विचित्रता को प्राप्त होते हैं, वे स्वयमेव आकर के पौधे मौधे में जो बीज पड़े रहते हैं बिल्कुल अजीब है, बीज अजीब ही होते हैं बिल्कुल, जीव तो बाद में आता है ना उनमें, अब वो फलने फूलने लगते हैं और घास हो जाती है, अलग अलग तरह के पौधे और कड़वे मीठे कसाले सरपरे सब तरह के उगने लगते हैं, अब कैसे हो जाता है, नए मेघों के जल के आने पर भूमि में पड़े हुए पुद्गल अपने आप सक्रिय होकर के, देखो भिन्न भिन्न है ना, और जैसे वो उगने लगते हैं उसी प्रकार आत्मा के स्वभाव परिणामों के समय कर्म पुद्गल परिणाम वास्तव में स्वयमेव विचित्रता को प्राप्त होते, स्वयमेव पर भजन है, उन्हें किसी ने कुछ नहीं किया, वे 8 महीना वैसे ही पड़े रहेंगे और बरसात आएगी तो फिर करने लगेंगे। एक मैंने ऐसा सुना है कि ये जो मेढक है ना, ये तालाब मालाब में होते हैं, अब ये तो खूब तैराते रहते हैं, और फिर जब तालाब धीरे धीरे सूख जाता है तो ये उसी मिट्टी में दब जाते हैं, और 8 महीने तक वैसे ही दबे पड़े रहते हैं। अब जिंदा रहते हैं कि मरे रहते हैं ये भी भगवान जाने के, वो जाने कोई वैज्ञानिक वैज्ञानिक अपन को नहीं पता। लेकिन जब पहली बरसात होती है और एकदम वो तालाब पोखरी भरते हैं तो रात में तर 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 करने लगते हैं। मैंने यदि पैदा होते तो उनको थोड़ा बढ़ करके चिल्लाने में थोड़ा समय तो लगना चाहिए ना, लेकिन घंटे दो घंटे में ही बोलने लगते हैं। तो या तो वो जिंदा थे वो पानी के मिलते हुए बोलने लगते हैं, और जिंदा नहीं थे तो उनका शरीर पूरा जवानी जैसा ही जिंदा उसमें था और नया जीव आ गया अरे बोलने लगते हैं। तो मैं कैसे डराने लगते हैं, नए जीव में की दर्शा दी अपने आप डराने लगते, उनमें स्वभाव है। उसी वक्त को और जो जीव जंतु होंगे, कीड़े मकोड़े वहां मक्खी मच्छर होंगे और चींटियां होंगी, वे मर जाती होंगी उसी जल के प्रवाह से। क्यों, कोई चींटी मर करके मेंढक के शरीर में चली जाती होगी, तलाने लगती होगी, जो भी होता होगा, लेकिन होता है, ऐसा होता ना। देखो वह इस प्रकार है, किस प्रकार है, देखो जैसे नया मेघ जल भूमि के संयोग रूप परिणमित होता है तब अन्न पदगत समय विचित्रता को प्राप्त हरियाली कुकुरमुत्ता और इंद्रगोप चतुर्वास में उत्पन्न होने वाला लाल कीड़ा आदि रूप परिणमित होता है। इसी प्रकार जब यह आत्मा, देखो वो अजीब जैसे बड़े जीव रूप होते हैं ना, जो मेढक बोल रहा हूं वही ऐसे, वही ऐसे जीव जंतुओं का नाम है। इसी प्रकार जब यह आत्मा राग देश के वशीभूत होता हुआ शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है तब अन्य योग द्वारा प्रविष्ट होते हुए कर्म पुद्गल स्वयमेव विचित्रता को प्राप्त होकर ज्ञानावरणादि भाव रूप परिणमित होते हैं। मतलब ऐसी ही विचित्र प्रक्रिया है, आचार्य कहते हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं कि समझ लो ऐसा होता है। अब तुम ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, बस होता है इतना जान लो कि जब तुम मोहराग देश का भाव करोगे तब ज्ञानमान बनना ज्ञानावरणा कर्मादि रूप परिणमित आगे तेरे से चैंट जाएगी। उसने कुछ नहीं किया और ना बाद में, वो ना चैंटी थी तब कुछ करेगी, ना पहले उसने कुछ किया ना बाद में कुछ करेगी, घबराना नहीं। जो भी तेरे में गड़बड़ी होगी वो तेरे कारण विद्यमान मोहराग द्वेष के कारण होगी। अब क्या तेरे जानने के स्वभाव के कारण भी नहीं होगी और पर के कारण भी नहीं होगी, तेरे अज्ञान भाव और मोहराग द्वेष भाव के कारण होगी। देखो गाथा नंबर 189 यह वो खतरनाक गाथा, एसो बंध समासो जीवाणम निश्चयेण ने दिट्ठो के बंध की संक्षिप्त प्रक्रिया, जीवों को बंधन की संक्षिप्त प्रक्रिया निश्चय नय से एक कही है। किन्ने कही, अरहंतन अनंत भगवान ने कही है, जदीरम और उनकी आचार्य परंपरा में जो मुनिराज हुए हैं उनने कही है, और व्यवहारो अन्नदो भणिदा और व्यवहार इससे जुदा है। मैंने और जो कथन है कि पर से बंधे वो सब व्यवहार के कथन है, असली तो ये है कथन कि अपने मूल राग देश से बंधा है। अब एक खतरनाक क्यों कहा मैंने इस गाथा को, इधर सीधी सच्ची बहुत सरल गाथा है, क्योंकि इस गाथा की टीका में ये लिखा है कि ये मूल राग देश रूप जो परिणमन आत्मा का है और इनका जो मूलराग देश का कर्ता जो भगवान आत्मा है वो निश्चय नय से है, वो शुद्ध निश्चय नय से है, और सब जगह अशुद्ध निश्चय नय से लिखा है और यहां शुद्ध निश्चय नय से। तो एक ही प्रयोग मिला है मुझे भी सारी जिनवाणी में जितनी मैंने देखी है, नहीं वो सब जगह अशुद्ध निश्चय नय से लिखा और पंचाध्यायी में व्यवहार नय से लिखा। देखो क्या लिखा पढ़ते हैं, जैसे जगत में वस्त्र सप्रदेश होने से, सप्रदेश वस्त्र का माने वस्त्र में ताना बाना है ना, लोंद फिटकरी आदि से कसायत होता है, जिसमें वह मजीठ आदि रंग से संबद्ध होता हुआ अकेला ही रंगा हुआ देखा जाता है, इसी प्रकार आत्मादि सप्रदेश होने से यथाकाल मोह राग देश के द्वारा कसायत होने से कर्म रज के द्वारा इसलिस्ट होता हुआ अकेला ही बंध है। अकेला ही बंध है मैंने वो स्वयं ही अपने बंध के कारण हुआ, अपने आप राग देश मुझे से बंधा, राग देश मुझे अपने में लेके बात करिए, बाहर नहीं रखे ने, ऐसा देखना चाहिए क्योंकि निश्चय नय का विषय शुद्ध द्रव्य है। ये शुद्ध द्रव्य है। कहने शुद्ध निश्चय ने क्यों कहा? क्योंकि ये शुद्ध द्रव्य है, मैंने पर का नहीं है, मैंने पर ने कुछ गड़बड़ की होती तो मिलावट होती तो अशुद्ध होता। ये शुद्ध क्यों है? ये इसलिए शुद्ध निश्चय ने इसे क्यों कहा? क्योंकि इस पर का संयोग नहीं है, ये इसकी शुद्धता है। ख्याल में आया ना? देखो ये तो 188 में गाथा ही पढ़ी ना अपन ने, अब आगे देखो 189 भी और पढ़ लो, घबराओ नहीं। अभी राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, वही पुण्य पाप रूप दैत है। आत्मा राग परिणाम का ही करता है, कितना साफ शब्दों में लिखा है, उसी का ग्रहण करने वाला है, उसी का त्याग करने वाला है। यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नय है। और जो पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है, वही पुण्य पाप रूप देत है। आत्मा पुद्गल परिणाम का करता है, उसका ग्रहण त्याग करने वाला छोड़ने वाला है। ऐसा जो नय वह अशुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप व्यवहार नय है। यह दोनों नय हैं, क्योंकि शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार के द्रव्य की प्रतीति की जाती है। ये दोनों नय हैं, माने की सत्ता है और दोनों प्रकार के द्रव्य की प्रतीति की जाती है। माने ये भी रोग में है, इनका पर का कर्ता भी कहा जाता, जनवाणी में कहा है, समझे ना? किंतु यहां निश्चय नय साधकतम है। कौन सा निश्चय नय? रागादिक का कर्ता भगवान आत्मा है। देखो उत्कृष्ट साधक होने से ग्रहण किया जाता है, क्योंकि साध्य से के शुद्ध होने से, द्रव्य के शुद्धत्व का द्योतक होने से निश्चय नय ही साधकतम है। किंतु अशुद्धत्व का द्योतक व्यवहार नय साधकतम नहीं है। तो इस तरह इस गाथा में रागादिक का कर्ता शुद्ध निश्चय नय से भगवान आत्मा को कहा है। बोलो अरे समय साधन में लिखा है, यह परिणमति सा करता, जो जिस रूप परिणमित होता है वो उस परिणमन का करता होता है। तो आत्मा राग रूप परिणमित हुआ तो आत्मा राग का करता है। अब वो ऐसा परिणमन इष्ट नहीं है हमें, तो सम्यक दृष्टि के राग में कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। राग रूप परिणमन है, सम्यक दृष्टि के राग रूप परिणमन है, लेकिन राग में कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। तो कर्तृत्व बुद्धि नहीं होने से, एकत्वमत्व बुद्धि नहीं होने से, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं होने से समय सार में उसे अकर्ता भी कहा है। और राग रूप परिणमन है, इस दृष्टि से प्रवचन सार में ही नहीं समय सार में भी उसे कर्ता भी स्वीकार किया है। अपनी गलती नहीं मानेंगे तो गलती को मिटेंगे कैसे? तो इस तरह से 189वीं गाथा तक का विषय अपन ने लिया, और कल ये अधिकार अपन समाप्त कर देंगे, और कल से चरणानी, फिर परसों से चरणानी योग चूल का चलेगी।